Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ananta Shri Vibhushita Prata Smaraniya Shrotriya Brahmanishtha Mahamandaleshwar स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए आदरणीय आत्मस्वरूप मधुबाबू जी समस्त पवित्र आत्मा साधक जन श्रोता जन बालक नचिकेता का द्वितीय प्रश्न जो तीसरे वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया। हमारे जीवन में दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक परोक्ष ज्ञान और दूसरा अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान माने श्रवण जन्य ज्ञान, सुना है, सुनने के बाद ज्ञान हुआ, वो आंख से परे वस्तु का ज्ञान है। अक्षणा परम परोक्षम, आंख से परे, कान से परे, इंद्रियों से परे विषय जुड़ा हुआ नहीं है इंद्रियों से, केवल शब्द के द्वारा सुना है। जैसे आत्मा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदम विज्ञानम ब्रह्म आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंशन्ति तद्ब्रह्म आदि श्रुति वाक्यों के द्वारा परमात्मा स्वरूप आत्मा के बारे में सुना है और उसके अस्तित्व का ज्ञान हुआ है। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक होता है। परोक्ष ज्ञान असत्वापादक आवरण शक्ति का भंग करता है और अपरोक्ष ज्ञान आभानापादक आवरण शक्ति का भंग करता है। परोक्ष ज्ञान भी अज्ञान को हटाता है और अपरोक्ष ज्ञान भी अज्ञान को हटाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। आवरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक असत्वापादक आवरण और दूसरा आभानापादक आवरण। वेदांत की प्रक्रिया में इस पर बहुत विचार किया है। असत्वापादक आवरण माने इंद्रियों के द्वारा परमात्मा के अस्तित्व का बोध न होने के कारण हमारे मन में एक भाव पैदा होता है कि वो नहीं है, वो असत है। बहुत से लोग विचारक भगवान को इसलिए नहीं मानते क्योंकि इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव नहीं होता है। एक प्रकार से चार्वाक मत है, चक्षुर्वै सत्यम, चक्षु उपलक्षित अन्य इंद्रियों के द्वारा जिन पदार्थों का ज्ञान होता है चार्वाक कहते हैं वे ही पदार्थ हैं अस्तित्व में। जैसे घटपटादि पदार्थ, हमारे आंख से बहुत से पदार्थ दिखाई देते हैं, हम अनुभव करते हैं, कान के द्वारा शब्द का श्रवण करते हैं, अनुभूति करते हैं, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध और गंधाश्रय पदार्थों का अनुभव करते हैं, त्वचेन्द्रिय के द्वारा स्पर्श और स्पर्श आश्रय पदार्थों का अनुभव करते हैं, रसनेन्द्रिय के द्वारा रस और रसाश्रय जो पदार्थ उसका अनुभव करते हैं, पांचों ज्ञानेन्द्रियों और मन के द्वारा हम जिन पदार्थों का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वे ही पदार्थ हैं, और जो पदार्थ प्रत्यक्ष के विषय नहीं है, जो परोक्ष हैं, वे पदार्थ नहीं हैं। जो नास्तिक चार्वाक हैं वो कहते हैं कि स्वर्गादि लोक नहीं है क्योंकि हमारे अनुभूति का विषय नहीं है, किम वदंतियां हैं केवल सुना जाता है। ऐसे आत्मा परमात्मा भी हमारे अनुभूति का विषय नहीं, होता तो दिखाई देता, भगवान होते तो दिखाई देते। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, भगवान होते तो दिखाई देते और दिखाई नहीं देते हैं इसलिए वो नहीं है। इसको शास्त्र ने असत्वापादक आवरण बोला। असत्व माने भगवान नहीं है, ऐसी मनोवृत्ति बन जाती है, इसको बोला है असत्वापादक आवरण। माने असत्व की मनोवृत्ति को निर्मित करने वाला आवरण आच्छादन। अब इस आवरण को कैसे भंग किया जाए? प्रथम कोटि जब कोई व्यक्ति सत्संग में आता है, अध्यात्म की मार्ग का प्रारंभ करता है, तो सबसे पहला प्रश्न उसके मन में यही होता है कि भगवान है कि नहीं। अब जिसके मन में शंका ही ना हो, इतनी आस्तिक बुद्धि, इतनी श्रद्धा हो कि अपने घर में ही माता पिता के द्वारा सुना है भगवान है, और उस भगवान के अस्तित्व के बारे में निसंदिग्ध श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करता है, उसकी बात तो कोई बात नहीं। लेकिन जिनके मन में भगवान के प्रति, उनके अस्तित्व के प्रति संदेह है, अब उस संदेह को मिटाने का उपाय क्या है? उस संदेह को मिटाने का उपाय है श्रवण। श्रवण माने आप किसी महापुरुष के द्वारा, संत के द्वारा, गुरु के द्वारा श्रवण कीजिए। और यहां श्रवण शब्द का अर्थ केवल सुनने के अर्थ में नहीं है, सम्यक श्रवण माने आद्योपांत, कोई बात आधी अधूरी सुन ले ना तो आदमी को बोध नहीं होता है। जैसे आप धारावाहिक देख लेते हैं टीवी में, आपको पता नहीं पहले प्रकरण क्या हुआ, और आप बीच में जाके बैठ जाए आपको समझ में नहीं आएगा। सीरियल इसी का तो नाम है ना, वो क्रम है। आप पहले एक दो बार उसको देखेंगे, सुनेंगे, आपको मालूम पड़ेगा प्रसंग क्या है, और प्रसंग के अनुसार फिर मालूम होता है कि वो क्या चल रहा है। ऐसे श्रवण भी हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन लगातार श्रवण करते जाते हैं हम, तो शास्त्र क्या कहना चाहते हैं, महात्मा क्या कहना चाहते हैं, उसका सही बोध होता है। इसलिए शास्त्र ने कहा कि निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। पतंजलि का सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। हमारी साधना, हमारा श्रवण दीर्घकाल होना चाहिए। दीर्घकाल का अर्थ है बहुत लंबे समय से हम करते आ रहे हैं, करते जाएंगे दीर्घकाल। अब यहां समय की कोई सीमा नहीं है, और निरंतर दीर्घकाल व्यक्ति करता है लेकिन उसमें निरंतरता नहीं होती है। बहुत से लोग सप्ताह में एक बार श्रवण करते हैं, वर्षों से करते हैं, वर्षों से सत्संग में आते हैं, लेकिन पूछो भैया प्रतिदिन आते? बोले नहीं, हम तो केवल रविवार रविवार आते हैं। तो नहीं आने की अपेक्षा आना बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन एक दिन आदमी आता है उसका प्रभाव तो उसके मन पर पड़ता जरूर है, लेकिन जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ पाता है। इसलिए दीर्घ काल में निरंतरता होनी चाहिए, जिसमें अंतर ना हो, नियमित प्रतिदिन, इसको नित्य सत्संग बोलते हैं। दो प्रकार के सत्संग होते हैं, एक नित्य सत्संग और दूसरा नैमित्तिक सत्संग। 7:30 से 8:30, 9:15 से 9:30, जो आप सत्संग करते हैं प्रेमपुरी आश्रम में, ये नित्य सत्संग है। ये धारा अनवरत चलती है, कितना भी बड़ा कोई कष्ट आ जाए, कोई आपदा भी आ जाए, यहां पर मानो किसी कारण से कर्फ्यू लगा हो, तो भी प्रेमपुरी आश्रम के सत्संग को कभी विराम नहीं मिलता है। चाहे एक आदमी बैठा हो तो भी सत्संग चल पड़ता है। ये नित्य सत्संग है, इसको बोलते नित्य स्वाध्याय। लेकिन बीच बीच में कोई भागवत की कथा, रामायण की कथा, महाभारत की कथा, जो कार्यक्रम होते रहते हैं ना, ये नैमित्तिक सत्संग है। और ये नैमित्तिक सत्संग भी व्यक्ति को बहुत ऊर्जा देते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो नित्य सत्संग है ना, उसकी तो बातें ही और हैं। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि आप ध्यान में, श्रवण में, जप में, स्वधर्म अनुष्ठान में अपेक्षित लाभ को पाना चाहते हैं तो आप दीर्घकाल, निरंतर, और तीसरी शर्त उन्होंने रखी सत्कारा सेवितो। श्रवण में श्रद्धा भी होना चाहिए, सत्कार, सत्कार माने आदर, सत्कार माने श्रद्धा, विश्वास। आप विश्वास के साथ प्रश्न कीजिए, आप यदि विश्वास नहीं करेंगे तो आप भगवान के बारे में प्रश्न भी पूछेंगे तो नास्तिक के प्रश्न होंगे। वो हम समझने के लिए प्रश्न करें, पहले से ही मान्यता बना ली कि भगवान नहीं है और आप पूछने लग जाए तो गुरु कितना भी उत्तर देते जाए लेकिन आप उसको नेगेटिव में ले जाएंगे। आप बोलेंगे है ही नहीं, आप कितना भी तर्क दे बोलेंगे है ही नहीं। तो आप किसी एक मान्यता पर न पहुंचे पहले अपने मन से, यह अपने वेदांत की बहुत बड़ी विशेषता है। किसी भी एक मान्यता पर न पहुंचकर है या नहीं है, ये दोनों पक्ष छोड़कर एक तटस्थ निर्णय श्रवण करने की बात हो, समझने की बात। यहां बालक नचिकेता का भी जो प्रश्न है ना, ये तटस्थ प्रश्न है। आज बालक नचिकेता ने ये मान्यता बांधकर प्रश्न नहीं किया कि वो भगवान है, अथवा ये मान्यता भी उनमें नहीं थी कि वो नहीं है। उन्होंने प्रश्न किया कि वो भगवान है कि नहीं, अस्तित्व की नायम अस्तित्व चैके, वो परमात्मा है कि नहीं, आप बताओ। यत पश्यसि तद्वद, जो आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं उसको आप कहो। तो ये प्रश्न श्रवण सुनने की इच्छा है, लेकिन सुनने की इच्छा के साथ एक आदर भाव है, गुरु के प्रति आदर है। वहां निषेध नहीं है, समझने की कोशिश है, समझने का प्रयास है। वो शास्त्र को अपने हाथ से छोड़कर अन्यत्र नहीं रख रहे हैं, उनके हाथ में ही है, संपूर्ण परंपरा भी उनके हाथ में है, लेकिन जानना चाहती कि सत्य क्या है, इसका रहस्य क्या है, अस्तित्व क्या है, और उस अस्तित्व के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो श्रवण में जब सत्कार हो, श्रवण में विश्वास हो, श्रद्धा हो, ये तीन चीजें जब जुड़ जाती हैं, दीर्घकाल, निरंतर और सत्कार। अब वो श्रवण जो है ना हमारे अंदर भगवान के अस्तित्व का आत्मविश्वास निर्मित करेगा। अब हमारे अंदर गहरी अस्तित्व की भावना निर्मित होगी कि भगवान है, और वो इतनी गहरी कि आपको कोई संदेह निर्मित करने का प्रयास भी करे तो भी आप डगमगाएंगे नहीं। आपको इतना विश्वास होगा कि नहीं वो है। एक मैं आदिवासी एरिया में जब गया पदयात्रा करने के लिए, करीब 600 किलोमीटर की पदयात्रा मैंने की थी आदिवासी लोगों में, तो आदिवासी लोगों ने एक बहुत सुंदर गीत सुनाया हमको। उस गीत का जो भावार्थ है बहुत सुंदर, व्यक्ति के भीतर कैसे विश्वास श्रद्धा होती है और वो विश्वास श्रद्धा परमात्मा तक कैसे पहुंचा देती है। उस कहानी का भाव बड़ा मधुर है। एक कछुआ और एक कछुवी है। पुराने जमाने की कहानियां भी बड़ी मजेदार हुआ करती थी और उन कहानियों से संदेश बहुत गहरा मिलता था। पति पत्नी है कछुआ कछुवी। कछुआ बहुत धार्मिक है, निरंतर वो प्रभु का नामस्मरण करता है, राम 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 राम। लेकिन कछुवी के मन में भगवान के प्रति कोई विश्वास नहीं है और वो बार बार अपने कछुए को बोलती रहती, तू क्या रटता है राम राम, क्या होता है इससे, तो जिसका नाम ले रहा है वो हैवी कि नहीं अभी मालूम नहीं, और निरंतर तुम रटे जाते हो राम राम। कछुआ बोलता नहीं, वो है, और हम प्रभु का नामस्मरण करेंगे तो प्रभु हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे। लेकिन कभी पत्नी ने विश्वास नहीं किया, कछुए ने विश्वास नहीं किया। संयोग से उधर से कोई एक शिकारी आया और शिकारी ने जाल बिछाया और दोनों कछुआ कछुवी को पकड़ लिया और अपने झोले में डालकर खाने के लिए अपने घर की ओर ले जाने लगा। कछुवी ने पूछा कि भैया अब तुम्हारा राम कहां है, तुम तो हमेशा राम राम बोलते थे और ये भी कहते थे कि राम हमारी रक्षा करेंगे, रक्षा करते हैं, तुम्हारे राम कहां है, अभी तक नहीं आए, अभी पकड़ करके ले जा रहे हैं हमको और हमको भून के खा जाएगा ये। कछुए ने कहा कि तुम केवल प्रभु का स्मरण करो, तुम राम के ऊपर प्रश्न मत करो कि वो है कि नहीं। बोले वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, वो जरूर मदद करेंगे। पत्नी ने कहा कम से कम अभी तो तुम अपने भ्रम को तोड़ो कि वो है और वो तुम्हारी मदद करने वाला है। कछुए ने कहा कि तुम संदेह मत करो, मेरे प्रभु को स्मरण करो बस। वो दोनों कछुओं को लेकर के घर गया वो शिकारी और कछुए को अपने पत्नी को दिया। पत्नी बड़ी खुश हो गई, बहुत अच्छे कछुए लाए हो। वो जंगल में ही रहते थे शिकारी लोग, उन्होंने आग जला दिया, आग, और आग जला करके नारायण एक बड़ा सा तवा रखा और वो तवा जब गर्म होने लगा तो उसके ऊपर कछुए को रख दिया। अब वो गर्म होने लगा कछुआ, दोनों तड़फने लगे। कछुवी ने पूछा कि कहो तुम्हारे राम, अब तो तुम जलने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे बोले कम से कम मरते समय तो मेरी बात मानो कि राम नाम की कोई चीज नहीं है और वो तुम्हारी मदद करने के लिए आने वाले भी नहीं है। कछुवी ने कहा कि तुम चुप रहो। बोले तुमको मरने का डर है ना, तुमको बहुत तकलीफ हो रही, तुम छटपटा रही हो, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुमको नहीं मरने दूंगा मैं, और तुम धीरे से मेरे पीठ पर चढ़ जाओ। कछुवी पीठ पर चढ़ी और वो बहुत तड़पने लगा कछुआ। पत्नी ने कहा कि तुम्हारे राम कहां, ये बताओ, अब तुम मारे मरोगे, उसके बाद तो मेरे को भी मरना है, थोड़े समय की बात है केवल। उसने कहा कि केवल प्रभु को याद करो, बड़े दयालु हैं और हमारी अवश्य मदद करेंगे। अब जैसे तड़पने लगा वो कछुआ नारायण, उसी समय तूफान आ गया और तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई, और ऐसी बारिश हुई कि दोनों शिकारी भाग गए वहां से, आग बुझ गई और दोनों कछुआ कछुए बच गए। कछुए ने कहा, देखा तुमने, मेरे प्रभु ने कृपा की। बोले, ऐसी कृपा होती है, जैसे ही मरने का समय आया और प्रभु ने आंधी तूफान बारिश पहुंचा दी और हमारी रक्षा हो गई। इसको बोलते विश्वास, इसको बोलते श्रद्धा। भगवान के अस्तित्व पर इतना प्रगाढ़ विश्वास कि वो हैं, आएंगे। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, शायद ये किसी महापुरुष की है, इतना विश्वास। वो आग में भी जल गए थे, वो शरीर भगवान वेद है, वेद का अस्तित्व स्वतः प्रामाण्य परतः प्रामाण्य विचार करते करते, मैंने इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा कि प्रभु का स्मरण करते करते, ध्यान करते करते उनके ऊपर बलिदान हो जाए, और बलिदान होते हुए भी उनके मन में कभी संदेह पैदा ना हो, न भी आए तो भी। उस कछुए का इतना विश्वास था भगवान के ऊपर, कदाचित मर भी जाता ना हो तो भी भगवान से शिकायत नहीं करता हो, वो मर भी जाता तो भगवान के अस्तित्व पर कभी कभी संदेह नहीं करता हो, इतना विश्वास। और ये विश्वास पैदा होता है नारायण निरंतर श्रवण करने से, धीरे 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 बात हमारे मन को समझ में आने लगती है, बहुत सी चीजें हमारे मन में प्रवेश करने लगती हैं। ये परोक्ष ज्ञान है, श्रवण जन्य ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। और ये परोक्ष ज्ञान करता क्या, परोक्ष ज्ञान हुआ माने अस्ति इति भगवान है। आपने हजारों बार सुना, आप धीरे धीरे आपके अंदर ना वो विश्वास के साथ साथ उसकी अनुभूति भी होनी शुरू हो जाती है। ये विश्वास केवल आपके जीवन में विश्वास नहीं रहता है, ये विश्वास आपके जीवन में कभी अंधविश्वास नहीं रहता है, उसकी अनुभूति भी होने लगती है। फिर आप महसूस करने लगते हैं कि वो है, वह आपको उसके अस्तित्व पर केवल शब्द से ही भरोसा नहीं करना है, श्रवण करते 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 आपको उसके अस्तित्व का अनुभव भी होने लगता है। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लाखों साधक हैं, आप सुनते भी होंगे, आपके संपर्क में भी ऐसे साधक होंगे, बोलते हैं कि भगवान ने हमको ऐसा अनुभव दिया, भगवान ने हमको ऐसा अनुभव दिया। एक कोई इंदौर में चातुर्मास कर रहा था, पति पत्नी आए मेरे पास, रिटायर प्रोफेसर थे, कथा के बाद वो मेरे पास आए और उस माई ने मेरे को इशारा करते हुए बोला, महाराज आप मेरे लाला को आशीर्वाद दो। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैंने कहा लाला को आशीर्वाद दो, ऐसा क्यों बोल रही है, लाला माने भगवान कृष्ण। और अपने झोले से भगवान को निकाला और लाला को बोला, लो लाला बाबा के दर्शन करो। और फिर उन्होंने अपने ठाकुर जी को अंदर रखा, तो मैंने उनको पूछा, मैंने भी भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि आप ये क्या बोल रही थी कि लाला बाबा को दर्शन करो और हमको भी बोली कि लाला को आप आशीर्वाद दो, ये बात क्या है। ये साधना की बातें ना बड़ी गहरी बातें हैं, और इसको समझने के लिए थोड़ी श्रद्धा की बहुत जरूरत है। वो ठाकुर जी को लाला को अपने पुत्र समझते हैं, वहां वात्सल्य भाव की उपासना है। दोनों पति पत्नी सोचते हैं, समझते हैं ठाकुर जी हमारे पुत्र हैं, और जब ठाकुर जी आपके पुत्र हैं वो भगवान होते हुए भी क्या आपने बनाया उनको पुत्र बना लिया। अब आपका बेटा है तो किसी साधु के पास जाके आप प्रणाम करवाओगे कि नहीं? अब इतनी गहरी उनके मन में भावना ठाकुर जी के प्रति, ये मेरा बेटा है। तो उन्होंने कहा कि जब हम गीता भवन आ रहे थे आपके दर्शन करने के लिए, तो हमने लाला को पूछा कि लाला तुम चलोगे? वृंदावन के कोई महात्मा जी आए चातुर्मास करने गीता भवन में, चलोगे दर्शन करने के लिए? और वो माता जी बोली कि हाँ, ठाकुर जी ने बोला हाँ हाँ चलूंगा। अब वो इतनी गहरी बात है उनके जीवन में कि उसको हम भी नहीं समझ सकते हैं। उन्हें अंतर मन से आवाज आती है कि हाँ चलूंगा या नहीं चलूंगा, लेकिन उस समय उनको लगता है कि ये मेरी आवाज नहीं है, उसके अंदर से आवाज निकलती है और उसको इतना पता है कि ये मेरी आवाज नहीं, ना तो ना और हाँ तो हाँ। और वो अंदर से अंतरात्मा से दो आवाज निकलती है, एक अपनी और एक दूसरी। वो ठाकुर जी को पूछती कि तुमको आज भोजन में क्या चाहिए, आज बाल भोग में क्या चाहिए, और अंदर से ठाकुर जी बोलते हैं हमको ये चाहिए। अब वही बनेगी चीज। जब उन्होंने भोजन के लिए घर ले जाके थालियां लगा दी, हम लोग तीन महात्मा थे, उन्होंने चार थाली लगा दी थी। तो हमने पूछा कि ये चार थाली चौथी थाली क्यों लगाई? बोले ठाकुर जी के लिए लगाई, लेकिन पूछती हूं ठाकुर जी को कि वो भोजन करेंगे कि नहीं। वो केवल ठाकुर जी को मूर्ति की तरह नहीं देख रही थी, वो ठाकुर जी को सचमुच अपने पुत्र रूप में देख रही थी। ये मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। वो अंदर गई मां, और जाकर के मैं सुन रहा था, नजदीक था उस पूजागर। ठाकुर जी को पूछा कि क्यों लाला, बाबा के साथ भोजन करेगा कि बाद में करेगा? अब हमको तो नहीं सुनाई दिया ठाकुर जी ने क्या कहा। वो आई और उन्हें कहा कि अब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि बाबा को पहले भोजन कराओ, बाद में हम खाएंगे। वो थाली उठा के लिए अंदर ली गई मान, और उन्हें भोग नहीं लगाया ठाकुर जी को। उन्होंने बोला है ना कि बाद में खाऊंगा, जब उन्होंने बोला कि बाद में भोजन करूंगा तो भोग कहां से लगेगा? भोग लगाने का अर्थ दिखाना। और वो अनुभव करती थी कि ठाकुर जी आके बैठे खा रहे हैं। ये कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा। अब उसको आप बोलो कि ये क्या बकवास है, ठाकुर जी नाम की कोई चीज है भी कि नहीं, वो क्या मानेंगे? ये अंतर मन की जो अनुभूतियां, ये विश्वास के द्वारा धीरे धीरे हमारे अंदर विकसित होती हैं। और उस समय आप ये नहीं कह सकते कि ये झूठी हैं या है भी कि नहीं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं मधु बाबू जो आपकी अनुभूतियां हैं, लेकिन उस अनुभूतियों को हम कर सकते हैं क्या? आपकी अनुभूति तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आपकी अनुभूति को हम झुठला सकते हैं क्या? आपको हम कितना भी बोले कि ये चीज आपकी जीवन में जो अनुभव में आ रहे वो नहीं है, आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, ये तो मेरा अनुभव है, मैंने तो देखा, स्वाद चखा है। भले आपको बता नहीं पाऊंगा, भले हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन वो है, ऐसा हमने अनुभव किया है।